श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 51। श्री नारदो वाच एतावत् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्योरभाषत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। महान ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार आपने भक्त प्रह्लाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नृसिंहदेव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रह्लाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य, यहाँ पर निर्गुण शब्द महत्वपूर्ण है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य को निर्गुण या निराकार मानते हैं। निर्गुण शब्द भौतिक गुणों से विहीन का सूचक है। दिव्य गुणों से पूर्ण होने के कारण भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और प्रह्लाद से बोले, ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाति स्वपदांतिकं। वंदेहम श्रीगुरो श्रीजितपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नाम त्रि जय देव कृपा सिंधो जय लक्ष्मी पते प्रभो जय निडम्बुज श्याम निडजीमुत सन्निभ जय पद्माधरित्रिभ्याम निषेवित पदाम्बुजम। जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभु। तो आप श्री राधा राधिका रमण के दरबार में उपस्थित आज के प्रातःकालीन सत्र में जितने भी भक्त वृंद मातृ वृंद हैं, सभी को मैं इस्कन की तरफ से और इस्कन वृंदावन की तरफ से स्वागत करता हूं। और हमारे आप तो यहाँ के ठाकुर जी तो बराबर आपके ही हैं, लेकिन आपने अतिदेव जो श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री नीता गौर सुंदर और श्री प्रभुपाद की श्री चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ कि उनके अशेष कृपा आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। तो आप मैं कह दूं कि मैं पहले से एडवांस क्षमा मांग लेता हूँ आपसे कि मुझे काल ये सूचना शाम को प्राप्त हुआ था कि आज के प्रातःकालीन क्लास गुरु महाराज देंगे, तो इसलिए मैंने तैयारी नहीं किया था और ना तो मुझे श्लोक बताया भी गया था। तो आज सुबह मुझे इमीडिएट 7 बजे खबर पहुंचा कि नहीं, आपको ही बोलना है और ये श्लोक है। तो मैं कुछ तैयारी नहीं किया हूँ, देखा नहीं, अभी यहीं देख रहा हूँ आकर के। तो हो सकता है मैं कुछ इधर उधर बकवास करूँ, तो इसलिए क्षमा कर दें, एडवांस एक्सक्यूज। तो ये जो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं ये देवर्षि नारद जी के बात है। देवर्षि नारद जी ने वहीं बैठे थे, आप अभी सभी आपने मानस नेत्र में मानसिक स्थिति में अब इस टेम्पल रूम छोड़ करके वहां पहुंचिए, कहां उस हिरण्यकशिपु का राजसभा विख्यात बहुत बड़ा भवन, उसके अंदर महा जो हिरण्यकशिपु का अपना सीट था उस महा आसन पर भगवान श्री नरसिंह देव विराजमान है, विकट रूप में विराजमान है नरसिंह रूप में, और केवल इतना नहीं उनके गोद पर और महाराक्षस राज हिरण्यकशिपु का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, फाड़ा हुआ है अंत उसका, उसका आंतड़ी को निकाल करके उन गले में पहने हुए माला, भयानक रूप, रक्त टपक रहा है, इधर उधर रक्त के फवारा निकल रहा है, ओ इधर उधर तक कई किलोमीटर तक कई डेड बॉडी और मड़े पड़े हुए हैं सब। अब दूर से जैसे हिरण्यकशिपु मर गया तो देवता लोग बहुत खुश हुए, नगड़ा जी बजाने के लिए आ रहे थे, पुष्प लेकर आए थे फूलने के लिए, लेकिन डर लग रहा था सचमुच मरा कि नहीं, क्योंकि कोई अस्त्र शस्त्र से कीच नहीं, ऐसे लेकर नाखून में मार दिए, डाउट हो रहा था, डर रहे थे क्योंकि हिरण्यकशिपु खूब सताया था उनको, तो डर रहे थे कि अगर मरा नहीं होगा उठ खड़ा हुआ तो, क्योंकि हिरण्यकश्यप उनके भाई के साथ लड़ाई करते करते एक बार भगवान के हाथ से गदा निकल गया था, बोले ऐसा कुछ ना हो, बता नहीं भगवान का तो चक्कर कुछ अलग होता है, तो इसलिए कंफर्म करना चाह रहे थे, कंफर्म करके पता लगाए मेडिकल सर्टिफिकेट में डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ, तब जाकर नगड़ा बजाया उन्होंने, फुल फुल फेंके बोले हर प्रकार से कंफर्म होने के बाद में तब खुश हो गए, तब बोले आप पुष्प वर्षा को बजा बजाओ नाच करो, अब प्रभु ने जब इतने अद्भुत रूप धारण करके हमारा संताप दूर किया, अब जब हिरण्यकशिपु को जो विदारित किए मार दिए तो उनको थैंक यू देना पड़ेगा ना, पूजा करेंगे ठाकुर जी विराजमान है, तो बोले चलिए। तो सारे देवगण केवल देवता नहीं, देवता यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर विद्याधर आदि आदि सब नाग भाग सब संपूर्ण ऊपर उच्च लोकवासी जितने हमसे ऊपर में जितने लोकवासी थे सब पितृलोक करके सब आ गए। आप स्तुति पढ़े होंगे हिरण्यकशिपु का डेथ के बाद में, वो सारे सीरियली वन बाई वन स्तुति करेंगे, हमारे भूलोक से ऊपर जितने लोग वाले हैं सारे ए टू जेड सब आ गए, आ करके भाई भगवान है ये तो समझ गए, देवताओं तो इतनी बुद्धि है कि उनके अलावा तो मार नहीं सकते, ब्रह्मा जी बोले कन्फर्म वही भगवान प्रकट हुए इसे अद्भुत रूप है, तो आ करके पूजा प्लेट आरती प्लेट लेकर आए थे पूरा फूल फूल मैंने जो सामग्री सारे उपचार सब लेकर आए आरती करने के लिए, लेकिन आ करके कौन आरती करेगा, शंख तो बजा दिए दूर में खड़े होकर के, लेकिन कौन माला पहले बना पहले पुष्प अर्पण करके उसके बाद आरती शुरू करें, कौन एक फूल माला पहनाएगा इसके लिए कोई नहीं जा रहे थे, पास नहीं जा रहे थे, ब्रह्मा जी आगे मुखिया थे वो माला थे जाकर खड़े हो गए ब्रेक मारे सडन, बोले देखो मैं आरती करूंगा ना माला आप पहना दीजिए, है ना, हम कभी बोलते ना तुलसी पूजा मैं करता हूँ आप आरती कर लीजिए, आरती याद नहीं तो क्या करूँ मैं पूजा कर लेता हूँ तुम गा लीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो कोई बात नहीं मैं आरती करूंगा आप माला पहना दीजिए, दूसरे को माला पकड़ा दूसरे को मुझे आप पहना दीजिए, सारे माला घूम कर आ गया कोई राजी नहीं हो रहे, कोई फॉरवर्ड स्टेप लेते नहीं, अरे घटना सबको तो पता है डर रहे हैं सब, कोई आगे नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिंहदेव इतने क्रोधित है अभी, इतने क्रोध मूर्ति को देख करके अब वो घबराते हैं, बोले पता नहीं इतने को मारे पता नहीं हमारा क्या हाल कर देंगे। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान ने का क्रोध बहुत दिन से प्रेशर देकर जमा होकर रखा हुआ था, अब निकला तो कम नहीं हो रहा है, क्यों प्रेशर देकर रखा हुआ था, क्योंकि भगवान के वचन है कि मेरे भक्त को कोई परेशान करे तो मैं संभाल नहीं सकता हूँ, मैं तुरंत एक्शन लूंगा। लेकिन प्रहलाद महाराज एक छोटे बालक के रूप से न जाने कितने 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 बार उनको सताया गया है ना, नहीं आपको सब पता है क्या क्या नहीं किया उनको मारने के लिए, भगवान नहीं प्रकट हो रहे। यद्यपि प्रहलाद महाराज बचा ही रहे थे लेकिन उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि समय नहीं आया था प्रहलाद महाराज, भक्त लोग प्रार्थना नहीं किए थे। उस समय आएगा तो भगवान नहीं आया था, तो इसलिए भगवान का क्रोध बिल्कुल स्टॉक बहुत हेवी स्टॉक पड़ा हुआ था। इतने दिन से क्रोधित थे, उस दिन से जिस दिन से उनके ऊपर अत्याचार शुरू हुआ उसी दिन से लेकर के भगवान महाक्रोध में है। लेकिन क्या करे, कोई एक्शन लेने के लिए बुलाते नहीं। वो तो चाहते हैं दौड़ के जाके मार दूं लेकिन कोई प्रहलाद नहीं बुला रहा है तो क्या करे, तो बड़े होकर बैठे थे। लेकिन जैसे आज ऐसे सिस्टम आया तो उनको बुलाया हिरण्यकशिपु ने, जब देखा किसी प्रकार से प्रहलाद को मार नहीं पाया तो हताश चिंता में बिल्कुल भर गया उन्होंने। आपने सीट में बैठ करके इतने महा टेंशन में पूरा डिप्रेशन हो गया उसको, बैठ करके कुछ उपाय नहीं सोच रहा था। अंत में बोला हर प्रकार से कर लिया, तो गुस्सा होकर बोला उनको बोला मैं खुद मेरे हाथ में मारूंगा, आज आप लोग मारते मैं खुद मारूंगा। तो बोले बुलाओ उसको, तो जाकर प्रहलाद को बुला के ले आए। प्रहलाद जैसे आए उनके सामने, प्रहलाद ठीक पूर्ववत आए, पिताश्री कहकर दंडवत प्रणाम किए। तो गुस्सा में आकर बोला तू बेटा प्रहलाद गजब है तेरा बात, तू कोशिश करते करते मरवाने की तो मरता भी नहीं डरता भी नहीं तू आकर दोबारा इसी दंडवत करता है मुझे, मैं क्रोध में पंचम से सप्तम स्तर को जा चुका हूं सब प्रकार एक्शन ले चुका हूं, मैं डिप्रेशन में आ चुका हूं, तू मर नहीं रहा डर भी नहीं रहा है, आकर के इसे आजीव जल नॉर्मल व्यवहार कर रहा मेरे साथ, बता तुझे ये ताकत कहां से आता है, कहां से सप्लाई शक्ति कहां से मिलता है। तो प्रहलाद महाराज का पिताश्री पावर हाउस तो की है, सप्लाई वहीं से आता है, आपको भी मुझे भी, कौन सा पावर हाउस है कहां से आता है, ना श्री हरि से। हरि मुझे देने पर नहीं लूंगा, मैंने मेरा शत्रु है उनसे मिलूंगा कभी नहीं लूंगा उनसे। बोला पिताजी अब माने ना माने मैं क्या करूं, सप्लाई तो वहीं से आ रहा है, मुझे भी आ रहा है आपको आ रहा है, ना बदमाश हरि से मैं लूंगा शक्ति, कहां तरह हरि बताओ आपको दे रहा है, मुझे तो विश्वास नहीं कि मैं ले रहा हूं उनसे, लेकिन तुझे देता होगा बताओ कहां है, कहां से देता है सप्लाई। बोले कहां से, तो सर्वत्र है सब जगह में है, इधर उधर देखा बोला मेरे ये कक्षा में है सभा में, बोला है, देखा बोला कोई है तो नहीं इधर, बोला शायद मेरा एज हो गया है चश्मा बदलना पड़ेगा दिखा नहीं पड़ रहा है, कोई है तो नहीं, ये यंग लड़का से दिखता होगा हमको है ना, नहीं उसका चश्मा लगता नहीं। बोला तुझे दिखता है कहाँ पे है, ना है ना पर्टिकुलर बताओ ना कहाँ पे है, पहले उनको देखता हूँ बाद में तेरे पास आऊंगा मारने के लिए, पहले जहां से सप्लाई शक्ति आता है पहले उसको तो खत्म कर दूं, कहां है बताओ ना, सब जगह में है यहां पर सब जगह में, अरे सब जगह में है मुझे तो देख नहीं रहा ना, मुझे तो एक बता दो कहां बैठे हैं, मेरा कहां बताऊं। तो उठकर खड़ा हुआ था खड़ग ले करके मारने के लिए, तो उनका सामने सभा भवन का जो मेन खंभा था वो बोला इसमें है क्या, ना है क्या पिताजी बैठे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं दृश्य थे देख ही रहे हैं मेरे और देख रहे हैं। बोले क्या घबरा गया, बोला सही में मुझे दिखाने को उनको दिख रहा है क्या, यहीं पे है क्या, हो ना हो कभी कभी अमल होता ना, अच्छा इसी में है क्या, तो इसी के शब्द में खत्म हो क्या, देखना क्या जरूरी है, उसका अंदर होगा तो खत्म हो जाएगा। बोले अरे खंबा के अंदर ही है तो खंबा कोई गिरा दो खत्म कर दो तो उसका अंदर खत्म हो जाएगा आपने, है ना, अगर खंबा के अंदर है खंबा को मिटा देने से मिट जाएगा खत्म, तो वो बेटा क्या करेगा प्रहलाद। तो सबसे पहले प्रहलाद को मारने के लिए दौड़े थे, बोला पहले से उनको मारो, तो खंबा के ऊपर एक प्रहार किए, प्रचंड मुष्टि का हाथ किए खंबा में, तो खंबा को जब मारे तब जाकर भगवान को चांस मिला निकलने के लिए। बोले अब मुझे निकाला गया। अरे बाप रे, जितने दिन का क्रोध उनका स्टॉक था सारे एक साथ निकाले। जैसे कई दिन से हाई प्रेशर होकर के रहता होगा, वो लीक हो जाए प्रेशर। तो प्रेशर कुकर में आपको भी सब्जी वगैरह बनता ना, पूरा फुल दे करके हाई प्रेशर डलते होंगे और हवा निकालने के लिए ज्यादा नहीं उसे जम जम गया होगा। इतना हाई प्रेशर होगा कभी कभी बिल्कुल वो कभी होता देखा, वो एक बार छात फात उड़ा देगा सब ब्रस्ट करके, सब अपना जो सब्जी वब्जी सब सेट हो जाएगा वहां जाकर के। तो यही से भगवान के क्रोध जो इतना दिन से उनके भक्तों को सता सब स्टोर था, आज खंबा फाड़ करके निकला सारे क्रोध। ऐसे खंबा जैसे फाड़ा तो कौन, उन्होंने मुक्का मारा तुम चांस बोला तू ही खोला, मैं मुझे क्या है। तब गर्जना करके निकले, सचमुच दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल सुनाई पड़ा घोर गर्जना उसको। इसी गर्जन को सुन करके बोला ये क्या साउंड आ रहा है कहां से, इतने भयानक साउंड आ रहा था कि पूरे ब्रह्मांड के लोग थर थर कांपने लगे। ये प्रलय का टाइम तो अभी है नहीं, अब किसे प्रलय शुरू हो गया, ये क्या हो रहा है। सब जगह लोग आश्चर्य होने लगे। रोत देख रहा था अब धीरे धीरे इधर उधर देखा कि साउंड कहाँ से आ रहा है, कि ऋषि के अंदर से आ रहा है, खम्भे से आ रहा है। अब अद्भुत रूपम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरे भृत्य की बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए स्तंभे सभायाम अति अद्भुत रूपम उद्वहन, सभा भवन के अंदर स्तंभा खंबा के अंदर से अति अद्भुत रूप प्रकट कर दिए भगवान। किस लिए प्रकट किए, आपने भक्तों के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए। सबसे पहले उनके भक्त थे ब्रह्मा जी, फर्स्ट लड़के उनके हैं, उनके शिष्य भी हैं। तो ब्रह्मा जी क्या उनके बात था, उन्होंने जब हिरण्यकश्यप को वरदान दिए, हिरण्यकश्यप ने पहले बोला था कि मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी बोले मैंने खुद अमर नहीं, तुझे कहां से लेकर दूं। बोले अच्छा अमर नहीं तो इनडायरेक्टली मांग दिया, इसमें नहीं मरूंगा। और लंबा लिस्ट पकड़ा दिया। बोले ओके करो सारे टिक मार करो, तो सब मार दिए टिक, ना अस्त्र में ना शस्त्र में ना घर में ना बाहर में, आप सब जानते हैं लंबा उपाय से लगभग अमर ही, उनका बुद्धि से बोला कि अमर ही हो गया। ब्रह्मा जी को बोका बना दिया मैंने ओके डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो मानेगा, ब्रह्मा जी तथास्तु कर दिए। इतने भयानक तप किया था ब्रह्मा जी, उन्हें छुटना चाह रहे थे, ओके करके चले गए। तो ब्रह्मा जी के सारे बात को ब्रह्मा जी ने जो बोले उनको सारे को भगवान ओके करना था, सत्यंग विधा तुम ब्रह्मा जी की बात को सत्य प्रमाण, तो बिल्कुल सत्य कर ब्रह्मा जी बोले थे मेरे सृष्टि में कोई ऐसे जीव नहीं जिसके द्वारा तू मर सकता है। सच मुझे ऐसे जीव था नहीं, कोई चिड़ियाखाना में नहीं देखने मिलेगा ऐसे जंतु, कहीं सुना ना देखा, अनसुनी ना अनदेखा। अरे हाफ लायन हाफ मैन ये क्या है भाई किसी प्रकार के, तो बिल्कुल अद्भुत रूप था। तो इसी को देख कर हिरण किसी को सोचने लगा ये क्या है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं कि सुना नहीं कि देखा नहीं, ये कौन सा जंतु है भाई। तो निकल करके इस अद्भुत रूप में फिर मारेंगे, कोई अस्त्र शस्त्र भी लेकर नहीं आए थे, क्योंकि हिरण किसी बोला था कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मरूंगा। तो अस्त्र क्या था उनका, नाखून, नाख, ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है, ना निर्जीव है ना सजीव है। आप नाखू जानते ना, ये मरा हुआ ना जिंदा हुआ है, आप भी कंफ्यूज होंगे समझ नहीं पाएंगे व्हाट इज दिस, कौन सा तत्व है, बड़ा अद्भुत है। इसीलिए तो डेली नरसिंह आश्रम गाते हैं तब कर कमल बरे नखम अद्भुत, नख अद्भुत है समझ नहीं कौन सा तत्व है वो दूसरी बात उनके हाथ तो कमल जैसे, भगवान के हाथ कर कमल है, कमल कितने मुलायम कितने खूबसूरत होता है, उसी में ये इतने कठोर नख, कमल में कठोरता कैसे आएगा मुलायमपन में, यही भी अद्भुत है। भगवान का हर क्रिया अद्भुत है, और इसे अद्भुत रूप लेकर के उठा करके लड़ाई के जो भी हो उनको मारे, मारने के बाद में जो देवता लोग ने आकर के उनको माला पहनाने के लिए आते थे, तो इतने दिन का जो स्टक गुस्सा था सब निकाल रहे, गर्जना कर रहे, अरे उनको मार करके उनके अंत को ला करके कोई माला तो पहना नहीं रहे थे। बोले कोई मैं आसन में बैठ गया, कोई आरती नहीं कर रहे, माला नहीं पहने तो माला कहाँ से मिलेगा, कोई माला नहीं, तो आपने बिफिटिंग जो माला सिंह के लिए कौन सा माला, पुष्प की माला थोड़ी पहनेगा सिंह। तो सिंह के लिए जो सुंदर जी लगेगा तो बिल्कुल रक्त से सना हुआ अंत को निकाल कर फाड़ कर पहन लिए स्वयं, अपने हाथ से खुद पहन लिए, कोई पहनाने वाला तो था नहीं। लेकिन देवता लोग बोले चलो वो तो मर गया मर गया, अभी तो अपने हिसाब से हम पूजा करेंगे ना, हम फूल की माला पहनाएंगे, अगरबत्ती और दीप सब दिखाएंगे। लेकिन वो क्या करें, वो थोड़ा ठीक ठाक बैठे तभी ना, अल्टर सेट नहीं हो रहा अब आरती क्या करें, अब यहीं से आरती करूं अल्टर से कुछ हाथ आए तो कोई पंजा तो डर रहे थे। तो सारे देवता निर्णय के कोई बात नहीं, चलो भाई माता जी के पास चलते हैं, प्रभु जी अगर गुस्सा में है तो माता जी अगर समझा दे तो ठीक हो जाएंगे। तो माता जी के पास गए, आग जाकर स्तुति की, तो लक्ष्मी जी आए बोले क्या बात है बेटा, ना ऐसे ऐसी बात है, गुस्सा में है, थोड़ा आप ठंडा कर लीजिए, ना अभी चलता हूँ, क्या बात है, मैं अभी ठंडा कर लेता हूँ, अरे कभी कभी गर्म हो जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग सुनकर अच्छा आपको मानते हैं, कोई बात नहीं। तो लक्ष्मी जी आए, कमर में साड़ी की बांध कर भीड़ करके आ गई तुरंत, अब लाओ माला लाता हूँ, लाओ मुझे पहना के आता हूँ, इसमें क्या है, माला पहनाना क्या, आ करके दो स्टेप आगे और बढ़े देवताओं के लाइन से आगे, बढ़ कर जब देखे फिर रुक गए, माता से मुझे नहीं लगता है कि वो है करके, वो तो वो है मुझे नहीं लगता है, क्यों, अरे मैं उनका साथ इतने दिन से हूँ, ऐसा फोटो तो मैं कभी नहीं देखा। इस प्रकार के रूप में तो पहली बार, सचमुच पहली बार देख रहे हो, बिल्कुल पहली बार था। तो वो भी बोले ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे वो है ये, मैं नहीं माला वाला बना, क्योंकि माता जी ना वह देख नहीं रहे, उनका सिंह से पंजा इधर और इसे इसे कर रहे हैं, अब लग जाएगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अभी। तो नहीं गई, आ ब्रह्मा जी हताश, शंख बजा करके अब आरती प्लेट रेडी, अब आरती करने के लिए नहीं थे। तब बेटा प्रहलाद को बुलाए, बोले देखो बेटा प्रहलाद, वो खड़ा था, सब ये दूर में खड़े थे, वो तो पास में खड़ा था, सारे उनके पिताजी के मृत्यु सामने उनका हुआ, तो खड़ा था, उनको बुलाया, बोले देखो प्रहलाद बेटा, तेरे वजह से हमारे भगवान इतने गुस्से हैं, केवल तेरी वजह से, तुम्हारा घर के लड़ाई हम क्यों फंसे हैं यार, तुम्हारा बाप बेटा का अपना मन होगा, हम उसे फंसा रखे, हम पूजा ही नहीं करने देते हमको, हम क्या बिगड़े बताओ, हम पूजा करने आए, दूर से पूजा भी नहीं करने देते, ऐसा करो तुम जाकर शांत करो, माला लो तुम पहनाओ, हम नहीं पहना सकते माला, हम तो आरती करेंगे तो माला पहनाओ। अब उनके ऊपर थोप दिए, देखिए संपूर्ण देवगण, केवल देवता नहीं, नाग विद्याधर गंधर्व किन्नर के संपूर्ण उच्च लोक के वासी, किसी का साहस नहीं हुआ भगवान तक फटकने के लिए, यहां तक कि साक्षात सौभाग्य की देवी भगवती लक्ष्मी जो भगवान के वक्ष विलासिनी है वो भी नहीं जा पाई, डर गई। अब 5 साल के निहत्ता लड़का प्रहलाद, जैसे उनको ब्रह्मा जी ने माला दिए, प्रहलाद बोले ब्रह्मा जी ओके ठीक है, मेरा दोष आप देते ना, वरदान कौन दिया था मेरे पिताजी को, मेरा दोष है नहीं ठीक है, आप जो बड़े लोग हैं आपको उत्तर तो नहीं है, बड़े लोग मैं क्या कहूँ, आप सीनियर है, आप बोलने से डांट देंगे, चलो ठीक है मानता हूँ, और क्या हम जूनियर है, सुनाइटी वटी के हिसाब से प्रहलाद जी ने ले लिया उनसे माला, ठीक है आप जो सीनियर आप ऑर्डर देते हैं पहना दो ना, करो क्या करो, तो ले करके माला चल पड़े। अब जा करके छोटे बालक है, और ये तो उनके पिताजी के सबसे हाई आसन में बैठे हैं, और ऊपर में इसने विशाल रूप उनका है, और इसने गर्जना तर्जना कर रहे हैं कि वो सर उनका आकाश छू रहा है, और ये बेचारा छोटा लड़का ऐसे पंजा उठाकर ऐसे ऐसे कर रहे माला लेकर के पहनाऊंगा, उनको देखे कौन, देवता लोग बोलते हैं कि भला हमने हाथ में दे दियो, किसी पहना के सीढ़ी फिड़ी तो नहीं ले रहा है मैं सीढ़ी फिड़ी लगा, सीढ़ी भी नहीं पहुंचेगा यहां तक तो ऊंचाई, क्या करें, वही खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं नजर थोड़ा नीचे हो जाए आपका प्रभु, नजर थोड़ा नीचे देखो, बहुत हो गया, तो कैसे भी कैसे भगवान इधर उधर उधर गर्जना तर्जना करते हैं, नजर दृष्टि थोड़ा नीचे पड़ गया, जैसे भगवान की नजर नीचे आया, देखे कि बालक निहत्ता ऐसे उठ करके बड़े प्रेम से, जैसे कि छोटे बच्चा अपने पिताजी के गोद में जाने के लिए हाथ बढ़ा कर रो रहा है, पिता पिता ले लो। कौन ऐसा होगा निष्ठुर पिता जो उसको उठाकर नहीं ले लेगा गोद में। तो भगवान भले निष्ठुर, बड़े कठोर हृदय था उनका, गर्जना कर रहे थे सिंह जैसा, लेकिन छोटा बालक इतने नम्र और इतने गुण से पूरित होकर के, इतने प्रेम और भक्ति से गदगद होकर के पंजा उठाकर, हाथ उठाकर प्रेम से माला पहनाना चाह रहा था। उनके ये भाव, इस रूप को देख करके भावग्राही जनार्दन एक मिनट में पानी पानी हो गए। अब उनका गुस्सा ठंडा हो गया, बोले अरे ये बच्चा मुझे माला पहनाना चाहता है, ये तो मैं जिसको मार के फाड़ दिया ये उनके ही बेटा है, उनके लिए मैंने सब कुछ किया, उन्हीं के लिए मैंने इतने गुस्सा हुआ हूं, उन्हीं के लिए मैंने ये सब काम किया हूं, लेकिन वो आज मुझे प्रेम से माला पहनाना चाहता है, मैं गर्जना कर रहा हूं देखकर माला नहीं पहन रहा हूं। आपने आप कुछ समझ, नहीं 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 यार, इसके लिए तो मैं आया, उसी के कहने पर, उन्हीं के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए तो मैं प्रकट हुआ कि मैं खंभा में हूं। ये बोल दिया मेरे भक्त, बोल दिया कि मेरे प्रभु खंभा में बैठे दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए मैं दिखाई पड़ा, उनके बात को सत्य करना था। तो आज वो मुझे माला पहनाना चाहता है, उनके हाथ से माला नहीं पहनूंगा, मेरे हाथ के दिया हुआ माला, भक्त के हाथ का माला तो कैसे नहीं पहनूंगा, तुरंत पहनना है बेटा, पहना दो, हेड नीचे कर दी। अरे आपका सर नीचे कर दो, उनको फिर भी सीढ़ी लगाने से नहीं पहुंचेगा। तो बोले अरे वो बच्चा छोटा है, नहीं पहना पहुंच सकता। तो आपने हाथ नीचे करके प्रहलाद को उठा लिए, नीचे से भगवान स्वयं अपने हाथ से उठा लिए प्रहलाद को माला सहित, उठा करके बोले कहां, पूरे कंधे पर ले ली, यहां लेकर बैठा दिए कंधे पे, कंधे पर बैठाए और मुंह नीचे करते, बोले अब पहना, मैंने जबरदस्ती पहनी ले उनके हाथ से। हाँ तो जाने क्या करें, जबरदस्ती उनके हाथ से माला पहन लिए, पहन करके इतने प्रसन्न हो गए, इतने सुखी हो गए कि वही कंधे में बैठा करके, वो सिंह है, सिंह तो किस कर नहीं सकता, आदमी है अपने बच्चे को गोद में ले तो बड़े किस करेगा, उनको चुम्बन करेगा ऐसे, लेकिन वो सिंह है वो क्या चुम्बन कर सकते, आता ही नहीं, वो क्या करेगा, चाटेगा, चाट गए सीधा आपाद मस्तक प्रहलाद बेटा को। इतने जैसे सिंह अपने सावक को वात्सल्य करता है, सिंह सावक को सिंहनी जैसे प्रेम करता है, वात्सल्य करता है, ऐसे प्रहलाद महाराज साथ करने लगे। और जब उनको हाथ में लेकर के चाटने लगे, सूंघने लगे, आप सोचिए भगवान के साक्षात कर कमल का स्पर्श पाना कितने कितने बड़ी, जोगिंद्र मनिंद्र देवेंद्र का कितने कितने हजारों वर्षों के ध्यान में ही प्राप्त नहीं हो सकता, अरे उनका चरण को दर्शन कर पाना मुश्किल है, अरे भगवान स्वयं अपना हाथ से स्पर्श करके उठा ले, हाथ उठा ले नहीं सर भी लगा ले और उसे सूंघे और चाटे, कोई रहेगा एक रंच भर के अनर्थ, कोई पाप कोई रहेगा, पूर्ण निर्मल हृदय हो गया प्रहलाद महाराज के अंदर, कंप्लीट भगवत भगवानमय हो गए, टोटल सरचार्ज स्पिरिचुअल एनर्जी, हाई वोल्टेज, पूरा आध्यात्मिक शक्ति का नक से लेकर सिक्त फुल लोड हो गया। और उसमें इतने आनंदित हुए उन्होंने, हम कभी कोई आनंद करना भोगना चाहते हैं लेकिन आनंद का महसूस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत रुकावट है, ये शरीर ऐसे ही भौतिक शरीर मरा हुआ है, इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि इंच इंच में भरा हुआ है, कितने प्यास, यहां करे तो यहां निकले, यहां करे तो यहां निकले, तो इसमें कैसे आनंद हो गए। मन भी भौतिक है, बुद्धि भौतिक है, शरीर भौतिक है, सारे उपकरण भौतिक है, आत्मा तो आध्यात्मिक, कैसे मैच होगा, आनंद कैसे भोगेगा, हो ही नहीं रहे, मन ही नहीं रहे। लेकिन आप भगवान ने प्रहलाद महाराज को अपने दो हाथ से उठा करके, सर लगा करके, जीभ लगा करके, पूरा अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से टोटल 1% सरचार्ज्ड विद फुल्ली स्पिरिचुअल एनर्जी, पूरे संपूर्ण आध्यात्मिक हो चुके थे। अब जो भगवान के स्पर्श, उनके कृपा, उनके लेहन को पा करके प्रहलाद जो आनंद अनुभव किए, इतने आनंदित हुए, इतने जैसे बच्चे जो खुश हो जाते ना, कैसे हंसते हैं, आप लोग को एक्सपीरियंस होगा, जिसके संतान है कभी आपको, आप बहुत उनको आप चुम्बन देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं बच्चा, आनंदित हो जाते, तो उनका मुख कमल से कैसे आनंद दिखाई पड़ता है कि बच्चा फुल आज खुशी में है। तो नरसिंह देव देख रहे थे प्रहलाद इतने प्रफुल्लित बदन है उसका। उसको देख करके नरसिंह देव सोचे तो मैं फेल, मैंने इतना खुश नहीं हो पाया अब तक, ये बच्चा इतना खुश हो रहा है, इतने आनंद अनुभव कर रहा है, मैं तो फेल उनके सामने, मेरा भगवत्ता जीरो उनके सामने, फेल, मैं सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ सर्वज्ञ हो करके ऐसा खुशी तो मैं अनुभव नहीं किया अभी तक जो खुशी प्रहलाद कर रहा है। भगवान अनंत लीलामय है, आपने लीला का तो कोई हिसाब किताब खुद ही नहीं पा सकते, दूसरे क्या कहे। इसीलिए तो बड़े बड़े जीव उनको बोलते हैं कि नहीं ये तो हो सकता अनित्य होगा, नहीं नहीं नित्य है, नहीं नहीं नरलीला है, माया है, सब नाना प्रकार के। कोई कोई लोग तो बोलते नहीं भगवान मनुष्य रूप में लीला करते, अरे हमारा जैसे तो है, अपना जैसे मनुष्य का बुद्धि वृत्ति प्रकृति ऐसे ही उनके ऊपर थोप दे, ऐसा ही है उसमें क्या। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि क्या मानुषी धनुमास मूढ़ा अवजानंती मांग मूढ़ा अवजानंती मांग मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, जो मूढ़ है मूर्ख है, मूढ़ शब्द का अर्थ मुख मूर्ख है ना, जो मूर्ख है वो सोचते हैं कि मैं तो ये अपने ऑर्डिनरी मनुष्य की तरह हूं। परम भावम जानंती मम भूत महेश्वरम, वो नहीं समझ पाते मनुष्य तरह समझते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अरे मैं तेरे लिए मनुष्य बनकर तू मुझे मनुष्य मानता है। कोई जेल में कभी प्रधानमंत्री आएंगे परिदर्शन में, दर्शन करने आएंगे जेल में, जैसे जेल के आगे दर्शन करेंगे उनके साथ में सुपरिंटेंडेंट आदि बहुत बड़े बड़े बॉडीगार्ड से चलते होंगे, कोई जेल के यदि कौन है प्रधान, अच्छा वो भी जेल में आ गए, चलो आए होंगे किए होंगे हमारा तो होंगे, चलो आज इधर ही आ जाओ, ऐसे में आएंगे ना कौन से सेल में, ऐसे समझना कितनी दुष्टता है। अरे वो आए हैं बदमाश आपको कृपा करने के लिए, आपको देखने के लिए, मन क्या कर देंगे आपका भलाई हो जाएगा, वो आप अपने तरह ही समझते हैं उनको, कितनी दुष्टता है। कोई कैदी अपना तरह कैदी उनको समझे, वो भी जेल में आए हैं। तो इस प्रकार भगवान कभी कभी इस मर्त्य लोक में आते हैं मनुष्य रूप लेकर के हम लोग के ऊपर कृपा करने के लिए, ऐसी लीला करें ताकि उनको उनको देखे सुने हमारे कल्याण हो जाए। तो हम कभी कभी अपने बुद्धि से समझते हैं तो हमारे जैसा है, उसी से उनको डालते हैं। तो इसलिए भगवान ने बोलते हैं बुद्ध को क्या समझाओ, तो वही समझ रहे अपना जी समझ मान रहा है। तो इसलिए भगवान ने जब स्वयं लीला में रहते हैं कभी कभी अपने को बताने के लिए अपना परिचय देने के लिए खुद तो नहीं दे पाएंगे, खुद को तो मिसअंडरस्टूड कर बैठे हैं, तो इसलिए अपने लोग से पता माने उनको एडवर्टाइज करवाते हैं, अपना को बारे में बताते हैं। तो अपना लोग कौन है, जो अपने निजजन है, जो अपनी भक्त होगा उन्हीं के द्वारा से तो भगवान दूसरे को बताएंगे कि मैं कौन हूं, मेरे लोग मुझे जानते हैं, वो बताओ जाकर उनको। तो भगवान ने खुद सिलेक्टेड आपने चुने हुए अपने निज जन से कभी कभी हमारे जैसे मूर्ख मनुष्य को अपने बारे में ज्ञान देते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं। और भगवान ज्ञान देने के लिए जिसको चुनेंगे उनको भी सिलेक्ट करना, उनको बताएंगे ऐसे ऐसे बताना जाकर के। जैसे कभी कभी आपको काम में भेजते हैं तो अथॉरिटी आप बताते हैं इसे जाकर इसे करना, फिर इसे करना, फिर इसे करना, बताते ना, नहीं तो आपको गड़बड़ कर देंगे। तो भगवान जिस अपने जन को दुनिया को भेजेंगे जाकर मेरे बारे में बताओ, तो उसको पहले वो ट्रेन करेंगे, शुद्ध करेंगे, फिट करेंगे। तो इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव जो पहली बार पिक्चर में प्रकट हुए और दुनिया में तो कोई देखा नहीं, अनसुनी अनदेखी है, तो उनके बारे में उनके तत्व को है कौन कैसा है क्या है बताने के लिए आपने ही अपने आदमी को सिलेक्ट किए। वो भले छोटा बालक हो या बड़े बूढ़े हो, ब्रह्मा आदि कोई देवता फिट नहीं बैठे इसके लिए, इसके लिए इस बालक प्रहलाद फिट बैठना, उन्हीं के द्वारा अपने को बताएंगे। इसीलिए उसको आपने हाथ में खुद उठा लिए और बिल्कुल स्ट्रेंथ भर दिए उनके अंदर, सारे ट्रेनिंग दिए उनको, दरस और परस दे करके उनको पवित्र करके शक्ति संचार करके उनको फिट कर दिए। अब बताओ जैसे कृपा आदि कर दिए, शक्ति संचार कर दिए, तृप्त हो गए, ब्रह्मा जी पूजा कर दिए, पूजा वूजा कर दिए, तब प्रहलाद स्तुति शुरू किए। प्रह्लाद जी की वंदना ये जो श्लोक में आया, एतावत गुणों, एतावत गुण, ये जितने सारे गुण वर्णितम, कौन वर्णन किया? प्रह्लाद ने वर्णन किया। ये श्लोक नंबर 8 से लेकर के 50 तक, लगभग 41 श्लोक, 41 श्लोक प्रह्लाद जी ने वहीं खड़े खड़े, वही उनके सामने सभी लोग, देवता लोग थे, सभी थे उनके सामने, वहीं पे वहीं खड़े खड़े 41 वर्ष बोले इन्होंने। और वो श्लोक के उनको स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए गया था, वो निकाल दिए, स्कूल से निकाल दिया गया था उनको, है ना, बैड बॉय करके नहीं निकाल दिए थे उनको। और तो किसी इतना सारे सीखे, बोले सीखे ही, कोई सिखाया गया? भगवान ने स्वयं हाथ पकड़ करके सिखा दिए उनको, जीवा ने चाट चुट कर सिखा दिए। बोले जा बोलो सबको बताओ मैं कौन हूं। वो लोग तो समझते नहीं, कोई डरते हैं, कोई भागते हैं, कोई बोलते हैं कि क्या है, कोई बोलते हैं क्या है, तो बताओ। तो इसीलिए सरचार्ज होकर के भगवत कृपा से अब प्रह्लाद महाराज स्तुति शुरू किए। ओ ब्रह्मा की ओर को सब खड़े थे, सुनने वाले कौन थे उनकी स्तुति? भगवान ने अपने बारे में क्या सुनेंगे, भगवान उनको बोलो बताओ। तो प्रह्लाद महाराज उनको तो मुंह यहाँ हाथ जोड़े, उनको मुंह करके ब्रह्मा जी और देख करके बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कौन है ये। तो ब्रह्मा देव पुरुगणा बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, आदि आदि इंद्र आदि इतने सारे बड़े बड़े देवता, आप लोग मेरे से कितने कितने सीनियर है, सतोगुणी है, बड़े बड़े पोस्ट पोजिशन में बहुत अधिकारी है, बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन आप उनको ना पूजा कर पाए, ना उनको समझ पाए, ना उनके गुणगान कर पाए। मैं तो नीच असुर कुल का जन्म हुआ हूं, उग्र प्रकृति का हूं, और उसमें बच्चा हूं, अनपढ़ हूं, अनभिज्ञ हूं, लेकिन प्रभु का ऐसे अद्भुत लीला मेरे द्वारा अपने तत्व को बताना चाहते हैं, तो बताना शुरू किया। भगवत तत्व का प्रकाश प्रह्लाद के द्वारा साक्षात बैठ करके नरसिंह देव उनके सामने बोलते, बोलते बताओ, तो उन्होंने बताया। अब भगवत कृपा से समन्वित होकर के जो 41 श्लोक प्रह्लाद महाराज ने बोले, वही भगवान ही बोले थ्रू प्रह्लाद। प्रह्लाद तो केवल माध्यम था, निमित्त मात्रम, वो निमित्त था, वो क्या बोलेगा, उसको बोलना क्या, इसलिए पहले से था एक्सक्यूज मांग लिया उन्होंने, मैं क्या कर सकता, लेकिन मेरे से बुलाना चाहते, मैं क्या करूं। तो खुद बैठ करके बुलाए उनसे, ये जो 41 श्लोक इतने महत्वपूर्ण है, उसमें बाकी कुछ नहीं है, वो 41 श्लोक को भी ढंग से समझ ले तो फिर इस भौतिक संसार से विरक्त तो हो ही जाएगा, भक्ति करना ही पड़ेगा उसको। सार बता दिए, भक्ति के महिमा के गान, भगवत भजन की महिमा के वर्णन किए, भगवत तत्व के वर्णन किए, भगवान ही उनके द्वारा कराए। अब नारद जी भी इसी गोष्ठी में तो थे ना, देवताओं के साथ में भी थे, देवर्षि है ना, देवता सब गए थे, तो उन्होंने अभी उनके पहले वो प्रह्लाद महाराज जो गर्भ में था तब नारद जी उनको सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब इसलिए उन्होंने भक्त हो पाए थे। अब इस बात को सुन करके जो नारद उस समाज में, तो नारद जी कहते हैं अभी इस श्लोक में कहते हैं कि अब जब प्रह्लाद महाराज ने 41 श्लोक बोल करके अंत में जो फाइनल श्लोक जब काल परसों पढ़े होंगे, जिसमें पहले तो नवविधा भक्ति कहे थे, अब षडविधा भक्ति कहे, बोले हम लोग नौ नहीं कर पाएंगे तो छह तो करो, तो षडविधा भक्ति कह करके वर्णन कर करके दंडवत प्रणाम कर दिए अर्भकन, छोटे बालक इतने श्लोक बोल बोल कर थक गए, प्रणाम कर लिए, जिसे प्रणाम कर लिए तब अब भगवान उनको पूर्ण प्रसन्न होकर के प्रीत होकर के अपने तरफ से ब्रजासना देंगे, वो बोलते हैं आशीर्वचन बोलेंगे, तो इसका अनाउंसमेंट नाराज जी करते हैं, बोले आप देखिए खबरदार सुनने रेडी हो जाओ, ठाकुर जी बोलेंगे अभी, अभी से बोलते इते वर्णितम। अब भक्त ने स्तुति अपना कर लिया, प्रह्लाद महाराज ने सारे बता दिया, बताने के बाद ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो करके आपने भंडार खोल करके उनको बोले सब तुझे दे दूं, मांगो क्या मांगना है मांगो, वरदान के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। ये बात प्रहलाद नारद जी स्वयं कहते हैं, नारद जी प्रहलाद जी के गुरु जी। अभी तक हिस्ट्री में कभी सुना गुरु जी ने शिष्य का गुणगान करे ना, शिष्य गुरु गुरु जी का गुणगान करते हैं, बताइए। शिष्य गुरु का गुणगान करते हैं ना, गुणगान करते हैं, डेली पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। लेकिन ये अद्भुत है, यहां गुरु जी ने पब्लिकली सारे देवताओं के सामने उनका गुणगान करता, बोले देखो ये कैसा, क्यों भक्ति। प्रहलाद महाराज के जो अनन्य भक्ति था, जिस भक्ति के भाव से भगवान नरसिंह देव बस में हो गए, मोहित हो गए, और उनके जो भक्ति भावित स्तुति को सुन करके भगवान आज अत्यंत प्रसन्न है। भगवान जैसे प्रसन्न है, भगवान के जो प्रचारक भक्त है बहुत प्रसन्न है नारद जी, वही असली आचार्य हैं, भक्ति प्रचारक, तो उन्होंने बड़े प्रसन्न है। तो इस प्रसन्नता की, भगवान की प्रसन्नता के बाद गुरु जी बताते हैं कि वो खुश हो गए, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं सारे देवताओं को। और देखो भक्त और भगवान के जो भाव विनिमय है, हम कैसे पता चलेगा हमको, गुरु परंपरा से। इसलिए नारद जी आदि गुरु है, वो बताते हैं, वो बताएंगे कैसे भगवान के गुण, कैसे भक्त के गुण आपस में बातचीत करते हैं, कैसे खुश होते हैं, ये गुरु जी ने बताते। इसको सुन करके हम भी प्रेरित होकर अगर इसे कर पाए, अगर भक्ति करके भक्त हो जाए, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। इसी के लिए भागवत में भगवान ने इसी प्रकार सब वर्णन देते हैं। कभी कभी स्वयं आपने सिलेक्ट करके अपने भक्त के द्वारा अपने ही तत्व बखान करते हैं, अपने परिचय खुद दिलाते हैं, नहीं तो कैसे देंगे। अब नरसिंह देव के बारे में तो ऊपर का हिस्सा तो सिंह है, इसमें तो प्रवचन नहीं देंगे वो, क्योंकि मनुष्य ऊपर से हिस्सा होता तो क्या बात होता, नीचे की हिस्सा म्यान है, ऊपर की हिस्सा लायन है। कभी कभी मेरे मन में प्रश्न उठता है कि भगवान नरसिंह बने, ऐसे अपर हाफ लायन और लोअर हाफ म्यान बने, ऐसे भी तो हो सकता था कि नीचे हाफ लायन ऊपर हाफ म्यान हो सकते थे, उसको भी तो नरसिंह कहा जा सकता था, है ना। नर हरि मतलब नर और सिंह मिक्स, वो नीचे पर्सन सिंह और ऊपर पर्सन म्यान, तभी नरसिंह होते, तो ऐसे क्यों नहीं हुए। प्रहलाद महाराज तो मनुष्य थे, उनका डील करने में अच्छा होता, देवता लग भी समझ जाते, पूजा उजा करने में उसका ठीक लगता, लक्ष्मी जी भी पहचान लेते। ये सर गड़बड़ी क्यों कर दिए, ऊपर हाफ को ऐसे कर दिए गड़बड़ी, नीचे हाफ को मनुष्य रखे, ऐसे क्यों कर दिए, आपका कहना क्या है, ऐसा करना ठीक होता ना। हाँ जी, दो हाथ, हाँ तो हाथ ऊपर आने का मतलब क्या हुआ, तो हाथ तो सिंह का हाथ था ना, तो मैं बोलता हूं ऊपर का हिस्सा सिंह क्यों बने, वो मनुष्य बनते नहीं, हाथ तो मनुष्य को हाथ ऊपर आता है, इसमें क्या है, शेर की जब बैठ जाता है तो उनका भी तो पंजा ऊपर उठता है, उनका भी चार पैर है ना, दो पैर दो हाथ मान लो, मान नहीं सकते। अरे वो जो अद्भुत लीला करते हैं वो मनुष्य के हाथ में फाड़ सकते हैं, जब नाखून में किसी को फाड़ सकते हैं, इतने भयानक असुर जो वज्र भी नहीं काम कर सकता, नाखून में फाड़ दिए उसको, तो आदमी के नाखून में क्यों नहीं फाड़ सकते, उनको कौन सा पड़ी है, तत्व फाड़ने का उनको कोई चेंज चेंज करने में कोई गड़बड़ी लगता है क्या, एक सेकंड में तत्व चेंज कर देंगे, तो मैन्युफैक्चरर है, उनको क्या पड़ी है। गुड, वो गुस्सा होना चाह रहे थे ना, गुस्सा मनुष्य चेहरा प्रकट नहीं हो सकता, दिस ह्यूमन बॉडी इज नॉट फिट फॉर एक्सपोजिंग एंगर। सिंह जैसे प्रचंड गर्जना गुस्सा होगा, क्रोध मूर्ति कोई देखने से डर जाएगा, तो मनुष्य गुस्सा होकर क्या करेगा, पूछने से कितनी हो जाएगा, है ना। तो वो बिफिटिंग बॉडी एक चाहते थे गुस्सा दिखाने के लिए, क्रोध प्रकट करना चाहते थे, तो क्रोध के लिए सिंह मूर्ति ठीक था, इसलिए भयावना मूर्ति इसलिए हुए थे, सिंह ऊपर हाफ का क्रोधित दिखाना चाहते, क्रोधमय मुख दिखाना चाहते थे, है ना। इसको देख करके घबरा गए सब लोग, सिंह मूर्ति। आज तक भी वो तो पता नहीं कितने हजारों लाखों साल पहले हुए थे। आज तक भी हम लोग मंदिर में तो दिन में दो बार तीन बार करते ही हैं, कहीं भी गाड़ी चलना शुरू किया नरसिंह जी, ये हुआ नरसिंह जी, जहां तहां देखो नरसिंह जी। मैं तो अभी देखता हूं कहीं प्रोग्राम में भाई कथा होता है, लास्ट को कुछ नहीं, लास्ट में एंड में फिर नरसिंह आरती गा लेते हैं। अरे भाई ये शाम है, गौर आरती करना चाहिए, वो हम ही नरसिंह वंदना क्यों? क्योंकि एक बार तो भगवान नरसिंह रूप प्रकट किए, लेकिन भगत लोग उनको तो दिन में चार बार की सात बार प्रकट करवाते कि उनसे काम लेते, हमको बचाओ, हमारा बॉडीगार्ड बनना है, हम अभी गाड़ी में जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, अब वो मुझे गाली दे रहा है, देख रहा है मेरे वो नरसिंह जी। अरे नरसिंह जी अब क्या करे क्यों? सिंह है ना, सिंह देखने से डर जाएंगे, अरे सिंह कहाँ से आ गया, बाजार के अंदर, गाड़ी के अंदर, इधर उधर, पल्टर में। तो इसीलिए हम उसकी विश करना चाहते थे, तो इसलिए बोले मैं सिंह नहीं हुआ, तो आदमी हुआ तो मुझे यूज नहीं करेंगे। क्रोध किसी को भय को निवारने के लिए किसी उठा तो सिंह देखते हो रे डर जाएगा सिंह। तो इसीलिए भगवान सिंह बनकर बैठे कि आपने भक्तों के हाथ के खिलौना बन पाए, जब देखो तो भक्त लोग यूज कर लेते हैं उनको फटाफट यूज करके उनको अपने भय से बच जाते हैं। तो इसलिए भय विनाशक विघ्न विनाशक रूप में नरसिंहदेव इसलिए सिंह रूप लेकर बैठे हैं। और एक बार बने जुगपत न जाने कितने हजार हजार युग पर्यंत भक्त लोग उसको यूज करेंगे, इस रूप के रूप मतलब उनके फटों को यूज करते हैं, ब्यास लगाते हैं इधर उधर उधर, है ना। तो इसलिए अद्भुत भगवान की लीला ही अद्भुत है, लेकिन उसका पीछे क्या रहस्य है वो उनके भक्त ही समझ पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा अपने जो महत्ता, अपने जो महिमा को प्रहलाद जैसे भक्त के द्वारा वर्णन कराए, सभी के सामने विशेष करके देवगणों के सामने प्रकट करवाए, इस बात को सुन करके स्वयं प्रभु भी प्रसन्न है और प्रभु जी के प्रथम गुरु आचार्य वो भी प्रसन्न है। वो दोनों ही आज बोलने के लिए खुद खड़े होकर बोल पड़ते हैं, पहले गुरु जी बोले फिर भगवान ही बोलेंगे, नारद जी बोले उसके बाद बोले तू हो गया, बस मैं बोलता हूँ अभी, है ना। दोनों शाबाशी पर थैंक यू देते हैं, इसे कोई प्रवचन होता ना तो बड़े बड़े सुनते अरे फर्स्ट क्लास, तो इसे सबसे पहले नारद जी बोले मेरे चला है ना, सबसे पहले वो उठकर बोलते हैं अरे देखो ये बोला, देखो प्रभु जी भी खड़े अभी प्रसन्न हो गए, ऐसा बात बोला। प्रभु जी बोलते मैं भी बोलता हूँ, चलो वो भी बोलना शुरू करेंगे कल से। तो इसे भगवान और अपने भक्तों के व्यवहार बड़े अद्भुत है, उनके रूप, उनके गुण, उनके व्यवहार, उनके भक्त सब अद्भुत है। इसलिए कभी कभी भक्तमाल में कहा गया है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन से नाशय विघ्न अनेक। ये नाम अलग अलग है, एक भक्ति, एक भक्त, एक भगवंत, एक गुरु, लेकिन है ही एक ही तत्व, एक ही प्रकार के। इनमें से किसी के पद वंदना करो, इनके कृपा से आपके अनेक विघ्न नाश हो सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आप लोग सब भक्त है, आप लोग सभी के होलसेल चरण वंदना में हमारा विघ्न नाश हो जाए, यही आशा करके आपसे विदा लेते हैं। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। जोरदार कृतल ध्वनि से परम पूजनीय भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज का धन्यवाद देंगे। भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज के महाराज कितनी विनम्रता से और कितनी सरलता से और कितनी मधुरता से जो कथा सुनाई, वास्तव में हम पंजाबी बाग छोड़ के हिरण्यकश्यप के राज दरबार में पहुंच गए थे। बहुत धन्यवाद महाराज ने साक्षात हमें दर्शन कराए अपने वचनों के द्वारा।